ओम शांति।
थकावट, रुकावट और कड़वाहट, इस विषय पर चर्चा होगी। थकावट, रुकावट और कड़वाहट, क्रिश्चियन धर्म में तीन झाड़ की एक कहानी प्रसिद्ध है। तीन झाड़ है। पहला झाड़ सोचता है कि मेरा उपयोग हीरे जवाहरात रखने के लिए उस संदूक के रूप में होना चाहिए, मैं ऐसे काम आऊं कि मुझ में बहुमूल्य हीरे रखे जाए। दूसरा झाड़ हमेशा स्वप्न देखता है, ड्रीम देखता है कि मेरा उपयोग एक बहुत विशाल जहाज बनाने के लिए होना चाहिए। तीसरा झाड़ हमेशा सोचता है कि मैं आकाश में इतना ऊपर उठूं, इतना ऊपर उठूं, सबसे ऊंचा, और लोग मुझे देखकर कहे कि इससे ऊंचा और कोई झाड़ नहीं, और मुझे देखकर लोगों को भगवान की याद आए। ऐसे वो तीन झाड़ स्वप्न देखते। एक बार लकड़हारों का एक ग्रुप, एक टोली उस जंगल में आती है। पहला लकड़हारा पहले झाड़ को काटना चालू करता है तो पहला झाड़ बहुत खुश होता है, क्योंकि लकड़हारा सोचता है कि मैं इस झाड़ से एक संदूक बनाऊंगा, एक पेटी बनाऊंगा। तो झाड़ खुश होता है कि मेरा अच्छा उपयोग होगा। परंतु वो लकड़हारा पेटी तो बनाता है पर उसमें हीरे जवाहरात नहीं रखता है। उसमें जो गाय और भैंसों का तबेला होता है उसका चारा रखने के लिए करता है। तो पहला झाड़ पहले बहुत खुश होता है, पहले स्वप्न देखता है, फिर खुश होता है, और फिर वास्तविकता जब आती है तो दुखी हो जाता है। दूसरा झाड़ स्वप्न देखता है जहाज बनाओ, दूसरा लकड़हारा आता है सोचता है इसका एक नाव बनाओ, तो झाड़ खुश होता है ये सुनकर उसके विचार, और वो जहाज नहीं बनाता, एक छोटी सी नाव बना देता है और एक छोटे से तालाब में। तो झाड़ का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे तो जहाज बनना था। तीसरा लकड़हारा जैसे ही तीसरे झाड़ के पास आता है, तीसरा चिंतित होता क्योंकि उसे तो कटना ही नहीं था, उसे तो ऊंचा ऊंचा जाना था। तीसरा लकड़हारा सोचता मैं करूं क्या, उसके मन में कोई विचार नहीं होता है, वो झाड़ को काटता है और अपने घर ले जाता है। तीनों झाड़ दुखी और लंबा समय तक दुखी रहते हैं, और वो अपने स्वप्नों को भी भूल जाते हैं, और वो उन प्रार्थनाओं को भी भूल जाते हैं जो कभी उन्होंने भगवान से की थी कि हमारा जीवन ऐसा हो, हम अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, मनुष्य के कल्याण के लिए लगाने चाहते हैं। ये उनका स्वप्न था पर जो वास्तविकता हुई वो कुछ और ही था। बहुत समय बीतता है। कहानी क्रिश्चियन धर्म की है। एक बार भगवान का पुत्र जीसस क्राइस्ट, उसका जन्म होता है। कहाँ होता है जन्म? जैसे कृष्ण और क्राइस्ट, इनका कंपैरिजन बहुत दिखाते हैं। कृष्ण का जन्म कंस के शासनकाल में हुआ, मथुरा में हुआ, जेल में हुआ, वैसे ही क्राइस्ट का जन्म वो तबेला जो होता है जानवरों का वहां होता है। कृष्ण का जन्म जब होता है कंस राजा है, उधर हिरोड राजा है। जब कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन जितने बच्चे जन्म लिए सबको मार दिए जाते हैं। इधर जिस दिन क्राइस्ट का जन्म हुआ किंग हिरोड सारे बच्चों की हत्या कर देता है, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि परमात्मा का पुत्र जन्म ले रहा है। तो वो पुत्र जन्म लेता है और वो जो पहला झाड़ उससे जो बना हुआ बॉक्स होता है उसमें वो आता है, उसमें रखा जाता है, क्योंकि वहां पालना भी नहीं है, वो इतने गरीब है कि जीसस क्राइस्ट के मां बाप जोसेफ एंड मैरी, उस झाड़ ने सोचा था हीरे जवाहरात मुझ में रखे जाए, पर स्वयं परमात्मा पुत्र उसमें आता है बाद में, तब उसे रियलाइज होता है, तब उसे समझता है कि मेरा स्वप्न तो जितना सोचा था उससे तो कई गुना अधिक सत्य हुआ, पर बीच में जो घटना घटी थी वो दुखदाई थी। सोचा था ये क्या, हम आए थे विश्व कल्याण करने, निकले थे क्या करने, और ये इतनी बाधाएं और इतनी मुसीबतें, परंतु जो हुआ वो परम कल्याणकारी था। उसने कभी झाड़ ने सोचा भी नहीं था कि जिसकी भविष्यवाणी होनी हुई थी, जो मसीहा है, पैगंबर है, पयंबर है, धर्म स्थापक है, वो मुझ में आया। दूसरा था नाव, जीसस क्राइस्ट के जीवन में दिखाते। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ गैलीली की झील में जा रहा है, वो 12 शिष्य है, वो सोया पड़ा हुआ है, और अचानक तूफान आंधी आ जाती है, सारे शिष्य डरने लगते हैं, कहां जाए, क्या करे, अब हम डूबे के डूबे, उठाओ, वो सोया पड़ा है। और जीसस को उठाते हैं, वो खड़ा होता है और हाथ करता है, पीस बी स्टिल, शांत, और तूफान थम जाता है। फिर अपने शिष्यों को एक बात कहता है, तुम मेरे होते हुए भी इतने परेशान, मैं तुम्हारे नाव में बैठा हूं, कहां है तुम्हारा ईमान, कहां है तुम्हारा निश्चय, क्या तुम्हें इतना भी निश्चय नहीं कि मैं जिस नाव में सोया हूं वो नाव डूब सकता है, फिर क्यों हलचल में आ रहे हो। वो जो नाव होता है दूसरा, ये उस नाव में घटना होती है। उस नाव ने सोचा था कि मैं, उस झाड़ ने सोचा था मैं बहुत बड़ा शिप बन जाऊं, पर आज उसमें वो बैठा है जो जगत का उद्धार और जगत का कल्याण करने आया था। बीच में बाधा आ गई, बीच में दुख हुआ, हम तो बहुत बड़ा बनने निकल गए, और ये क्या, कौन सी छोटी जगह, कौन सा छोटा सेंटर, कौन सा छोटा गांव, कौन सा छोटा स्थान, पर उसी स्थान में और उसी नाव में ये घटना घटी, और फिर उसे खुशी हुई, किंग ऑफ किंग्स मुझ में बैठा है। बहुत सुंदर वाक्य है बाइबल में, जीसस कहता है, ओ कम ईमान वालों, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, इतना भी निश्चय नहीं, इतना भी विश्वास नहीं कि तुम्हारी नाव में मैं हूं, और फिर भी डरते हो, फिर भी सोचते हो नाव डूब जाएगी, क्या यही तुम्हारा निश्चय है, क्या यही तुम्हारा ईमान है, क्या यही तुम्हारा फेथ है, यही विश्वास है मुझ पर। जिस नाव का केवट स्वयं भगवान है, वो नाव कभी डूब नहीं सकती, जिसे स्वयं भगवान चला रहा है वो डूब नहीं सकती। तीसरा झाड़, उसको तो बस काट के लेके गए, खड़ा के खड़ा सड़ रहा है, उसी जीसस क्राइस्ट को जब सूली लगी, और वो सूली का जो लकड़ा था उसी झाड़ बना। उसका स्वप्न था कि मैं सबसे ऊंचा, और लोग मुझे देखे तो भगवान की याद आए। आज उसी लकड़े पर जीसस को सूली लगी, तब उसे पता चला कि भगवान की प्लानिंग क्या थी, और बीच में जो हुआ वो क्या था, बीच में जो बाधाएं आई वो क्या था, वो बाधाएं भी यहां तक पहुंचाने का मार्ग था। हमें नहीं पता चलता जीवन में जो हो रहा है क्यों हो रहा है, परंतु एक है, निश्चय हो कि जो हो रहा है अच्छा, जो विघ्न है, जो समस्या है, जो बाधा है, जो बैरियर्स है, ऑब्स्टैकल्स है, जो लोग विघ्न बनकर आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। उन सबकी ही शुभकामना है कि हम संपूर्ण बन जाए। जो जो दुख दे रहा है वो ये चाहता है कि सारे दुखों में हम स्थिर रहे, तो धन्यवाद ही करना चाहिए उसका, कितनी शुभ भावना रखी है। हमें संपूर्ण बनाने का दायित्व उसने उठाया है। मान अपमान निंदा स्तुति हानि लाभ योगी तो आत्मा आज वर्ष स्लोगन था ना। जीवन में थकावट के क्या कारण है? एक आत्मा जो अपने जीवन को समर्पित करती है यज्ञ में, जब ऐसी आत्मा के जीवन में थकावट आ जाती है, दो कारण है, रुकावट और कड़वाहट। थकावट के दो कारण, रुकावट और कड़वाहट। इस रुकावट के, इस जीवन में आने वाले एक ब्रह्मा कुमारी के जीवन में ऐसे सात विघ्न हैं, ऐसी सात परीक्षाएं हैं, ऐसी सात अग्नि परीक्षाएं हैं जिससे हर एक को गुजरना पड़ेगा। सिक सिक झुक झुक मरमर, ऐसे सात पेपर्स कहो, विघ्न कहो, रुकावट कहो, और जो इन रुकावटों में रुक गया या दुखी हो गया या उदास हो गया या नाराज हो गया या फिर डिप्रेस्ड हो गया और उदासी में चला गया, वहां फिर थकावट आएगी, फिर कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। कार्य किए जा रहे परंतु यंत्रवत, अमृत वेला उठना काम पूरा हुआ, मुरली सुना देना काम पूरा हुआ, सेवा कर लेना काम पूरा हुआ, कारोबार चल रहा है जैसे, मन कहीं और है, चित्त कहीं और है, खुशी उसमें नहीं है, केवल किए जा रहे हैं। सबसे पहला विघ्न या रुकावट या पेपर लौकिक से उस दुनिया को छोड़ चुके हैं, फिर भी वहां का कोई बीमार, वहां की कोई समस्या, वहां की कोई आर्थिक समस्या, वहां की किसी की मृत्यु यहां हलचल क्रिएट करती है। आर्मी में एक नियम है, यदि खाई है बीच में, पुल बांधते हैं इधर से इधर जाने के लिए, एक बार उधर चले गए इस पुल को काट देते हैं ताकि वापस आने का कोई चांस ना रहे। कट द ब्रिजेस, इसको कहा जाता है कट द ब्रिज। उधर से इधर आ गए, पुल को काट दो, पहला। दूसरा, थ्रो द लैडर, सीढ़ी को फेंक दो, एक सीढ़ी से नीचे से ऊपर की ओर आए, ऊपर पहुंचने के बाद सीढ़ी उठाकर फेंक दो ताकि वापस नीचे आने का कोई मार्ग ना बचे। तीसरा, ड्राउन द बोट, उस किनारे से इस किनारे नैया में आए, इस किनारे में आने के बाद उस नाव को डुबो दो। यदि यहां आने के बाद भी वहां की यादें चालू है, यहां आने के बाद भी वहां के लोगों में आकर्षण, अट्रैक्शन, मोह, लगाव, फोन कॉल्स डेली अभी भी चालू है, तो अभी तक नया जन्म हुआ ही नहीं है। यहां आने के बाद भी उधर की दाल और रोटी अभी भी याद आती है, और मम्मी अभी तक याद आती है, और उसके हाथ का भोजन अभी तक याद आता है, और जब तक उससे बात नहीं करते चैन नहीं होता है, और उसको अगर कुछ हो गया तो बस फिर इधर हलचल ही हलचल, और उधर किसी को कुछ हो गया तो इधर हलचल, और ये सब होगा। कोई भी अविनाशी नहीं है, सबको मरना है, मां बाप बहन भाई मित्र संबंधी। किसी एक जगह पर हम गए थे, बहन जी कह रहे थे इन छोटी बहनों को समझाओ, बात बात पर धमकी देती है। हम चली, इनको कुछ कह ही नहीं सकते, कहा कि बस गए, दो दिन बात करना बंद, नाराज उदास रोना रूसना, फिर मनाओ, और ज्यादा बोल दिया तो गए, यहां आना अर्थात उस दुनिया से मर जाना, फिर वहां क्या हो रहा है और किसका क्या हो रहा है तोड़ निभाना ठीक है, परंतु साक्षी, परंतु डिटैच्ड, और वहां कुछ ना कुछ होगा। वो ज्ञान में है तो बहुत अच्छा है, तो भी उसमें भी मोह होता है, अगर नहीं है वो अलग प्रकार की समस्या है। परिवार ज्ञान में, परिवार ज्ञान में नहीं, इतना डिटैचमेंट हो कि जैसे अब वो दुनिया हमारी है ही नहीं, यही हमारे मां बाप है, यही हमारे सब कुछ है। हॉस्पिटल में मधुबन निवासी पुराने पुराने आते हैं, कई भाइयों के जो इंट्रोडक्शन आइडेंटिटी, माता का नाम दादी प्रकाशमणि ऐसे लिखे हुए हैं, पिता का नाम ब्रह्मा बाबा, वो दुनिया जैसे पूरी छूट गई। फिर बाद में बदलने पड़े, आधार कार्ड ये सब आया तो चेंज करो, वो दूसरी बात है, पर सबके नाम बहुत सारे हो जी, पुराने पुरानों के ऐसे ऐसे नाम है, वो दुनिया ही समाप्त उधर की, सब कुछ यही है, यही मां बाप है, यही जीवन है। अब उस दुनिया से कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ विघ्न क्रिएट होंगे उधर, पर हम उसमें नहीं जाएंगे, उस आसक्ति और मोह में नहीं फंसेंगे। ये पहला विघ्न हर एक के जीवन में आएगा। दूसरा विघ्न है साथियों से विघ्न, सेवा साथियों से विघ्न, स्वभाव संस्कारों की टक्कर। अकेले रहना बहुत आसान है, 10 लोगों के साथ रहना बहुत बड़ा पेपर, जहां हर एक का स्वभाव अलग, वन वन की काठी साकार मुरलियों में आता है, यहां एकत्र हुई है, सभी से संस्कार मिलन की रास करते हुए चलना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी एक तपस्या है। और पेपर साथियों के द्वारा आएंगे, किसी से कुछ तो किसी से कुछ, पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, किसी का दुश्मन नहीं बन जाना, किसी से दुश्मनी नहीं कर बैठनी है, क्योंकि रहना उन्हीं के साथ है। किसी से दुश्मनी कर ली और वो सामने से आ जाए तो क्या करेंगे, मुंह इधर करके जाएंगे। रहना इन्हीं लोगों के साथ है, इसी परिवार के साथ है, हिसाब किताब यहीं पर है, हमारे हृदय में। इंग्लिश में एक कहावत है, इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर, अहंकार की लड़ाई में जो जीतता है वो वास्तव में हारता है। हमें जीतना नहीं है किसी लड़ाई में, अपने साथियों और मित्रों के साथ जीतना नहीं है, और उनके द्वारा पेपर आएंगे, कुछ ना कुछ वो करेंगे, परंतु सबको समाते जाना, उसका वर्णन करना, उसका विस्तार करना, फोन करना, उसके शत्रु के साथ दोस्ती करना, ये सब हम करने यहां नहीं आए। पेपर आएंगे, सीखते जाना। और एक सूक्ष्म बात जो आपको बहुत काम आएगी, हमेशा ये लक्ष्य रखना है, मुझे दूसरों से सुनने से ज्यादा उनको समझना है। एक है दूसरों को सुनना, उससे भी ज्यादा है सामने वाली आत्मा को समझना है। किसी ने क्रोध किया, क्यों किया, कुछ तो है, इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है उसकी, वो बाहर की अभिव्यक्ति है। शब्दों को नहीं पकड़ना, ना ही खाली सुनना, आत्माओं को समझना है। कौन सी आत्मा है? सेवा साथी, क्योंकि उनसे सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, और उनसे डिस्टर्बेंस होने के बाद में रिकवरी के लिए ज्यादा टाइम लगता है, कभी कभी 1 घंटा, 24 घंटा, 1 हफ्ता, 1 मास, 6 मास, 1 साल, 10 साल, 10 साल हो गए अभी तक वो झगड़ा जो हुआ था ठीक नहीं हुआ है। क्रैक जो कांच है उस पर क्रैक जो आ गई वो अब तक है, इसके लिए दूसरा पेपर साथियों के द्वारा आएगा, उसमें झुक जाना। किसी को कितना भी झगड़ा करना है, ईर्ष्या करना है, करने दो, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, सबका कल्याण हो। दूसरा पेपर, तीसरा पेपर आएगा स्टूडेंट्स के द्वारा। जो स्टूडेंट्स आज सहयोगी दिखाई दे रहे, अचानक असहयोगी हो जाएंगे। जो हमारी आज स्तुति कर रहे, तारीफ कर रहे, अचानक आना ही बंद कर देंगे। हमारे संकल्प चलेंगे, गया कहां। जो स्टूडेंट्स जिनकी हमने बहुत सेवा की और जिनको हमने कोर्स कराए और जिनको हमने किचन में एंट्री दी, और वही हमारे विरोध में प्रचार करने लगे अचानक। स्टूडेंट्स की पालना करनी है, प्यार करना है, पर किसी स्टूडेंट में फंसना नहीं है। लगाव ना हो जाए किसी में, क्योंकि लगाव हुआ तो एक बंधन चालू हो जाएगा। फिर जब उससे धोखा होगा तो बहुत दुख होगा। स्टूडेंट्स की पालना करना, प्यार करना, परंतु डिटैच, वो उधर हम इधर। चाहे वो कितने भी अच्छे हो, शुभ भावना उनके प्रति है, परंतु यहां से जाने के बाद घर में क्या करता है कोई हमें नहीं पता। हरेक के घर में टीवी रखा हुआ है, हरेक के घर में लौकिक वातावरण है, विश्वास सब पर है, पर अति विश्वास नहीं है। हमने कईयों को देखा है, बहुत सारी बहनें डिस्टर्ब हो जाती है फिर, क्योंकि जिस स्टूडेंट पर, जिस माता पर इतना विश्वास किया था, वही माता जाकर आज सब जगह जाके कंप्लेंट कर रही है, चरित्र पर कलंक लगा रही है, जोड़ रही है ये बहन का उस भाई के साथ कुछ चल रहा है, हमने सोचा भी नहीं था ये ऐसा करेगी। और जब पवित्रता पर कलंक लगाए जाते हैं तो आत्मा बहुत दुखी होती है अंदर से, और बाकी चीजों से नहीं होगी। किसी ने कहा तुमने चोरी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, हमने किया नहीं है, फिर भी झूठा आरोप। अपवित्रता हमारे जीवन में नहीं है, संपूर्ण पवित्रता है, परंतु फिर भी कोई कलंक लगाए तो दुख होगा। इसलिए स्टूडेंट से सावधान, प्यार सबको करो, परंतु लिमिट, डिटैचमेंट, सीमा के अंदर। वो लोग उस सीमा को क्रॉस करके इधर ना आ पाए, इतना घुल मिल नहीं जाओ, इतना ही रिश्तेदार नहीं बना दो किसी को, उनको पता रहे ये कौन है, ये ब्रह्मा कुमारी है, समर्पित बहन है, टीचर है, निमित्त भगवान ने इसको बनाया है, कोई साधारण नहीं। इतनी हिम्मत ना हो किसी की आके हाथ पकड़ ले। ब्रह्मा कुमारी अर्थात अनटच्ड, किसी का स्पर्श ना हो। किसी पुरुष की इतनी हिम्मत ना हो कि समीप आए, वो कोई भी हो, फिर छोटा, जवान, बड़ा या बूढ़ा, क्योंकि वासना उम्र को नहीं देखती। बूढ़े से बूढ़े में भी वो सारे भाव प्रकट हो सकते हैं जो एक कॉलेज के स्टूडेंट में। इसके लिए सभी स्टूडेंट से सावधान, विशेषकर युवक, युवा वर्ग, उनकी भी पालना बहुत करनी है, मां समान पालना करनी है, विशेष रूप से कुमारों की। और उन्हें दो ही चीज प्रिय है कुमारों को, ये दो चीज अगर उनको दे दी जाए तो वो पूरा जीवन अर्पित कर देंगे सेवाओं के लिए। एक भोजन, दूसरा स्तुति। दो चीज उनको चाहिए, अगर दो चीज उन्हें नहीं दी जाए और केवल काम कराया जाए और सेवा कराई जाए तो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और संख्या कम होगी और भाग जाएंगे। वहां भागेंगे जहां से मां की पालना मिलती है। सेवाएं थोड़ी सी भी करे, दिल खोल कर उनकी स्तुति करो और सबके सामने, तो फिर उनका थोड़ा सीना भी, उनको भी जरा मजा आएगा, खुशी होगी और उमंग उत्साह से कार्य करेंगे। और दूसरा है भोजन। जब कोई बहुत सेवाएं करे, दिन रात लगाकर सेवा करे, दिल खोल कर उसे भोजन, पुरुष के पेट दिल का रास्ता कहां से खुलता है बताए ना, पेट से चालू होता है, यहां से रास्ता इधर का है सबका ही। वैसे तो ये दो चीजें उनको देनी है, मां बनकर पालना करनी, पर उनमें फंसना नहीं है। किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बना देना, टीचर्स से मुलाकात, बाबा के महावाक्य, टीचर्स को बहुत प्यार से सेवा करनी है पहला, और किसी के प्यार में फंसकर सेवा नहीं करनी है ये दूसरा वाक्य। स्टूडेंट से पेपर, चौथा बीमारी, शारीरिक बीमारी आएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि निरंतर हम अच्छे ही रहे, अच्छे रहे तो बहुत अच्छा, धन्यवाद उसको कि शरीर स्वस्थ है, पर शरीर में बीमारी आएगी, अचानक कैंसर डायग्नोज होगा और अचानक पता चलेगा अब कीमोथेरेपी लेनी है, फिर घबराना नहीं, सारे बाल उड़ जाएंगे, बहुत संभाला था इनको, सब गए, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, बहुत सारी बहनें आती है हमारे पास, कितनी अभी भी है कि जिनको कीमो चालू है। बीमारी अचानक आई, मम्मा को भी बीमारी आई और जब पता चला वो कैंसर लीवर तक पहुंच गया था, ब्रेस्ट कैंसर। मम्मा का एक्सरे अभी भी उधर बीएससीएस हॉस्पिटल में रखा हुआ है, चेस्ट एक्सरे, पर मम्मा अडोल थी, अचानक डायग्नोसिस हो गया कोई रेयर बीमारी का। एक बहन हॉस्पिटल में आती है, यंग थी, बहुत सेवा का उमंग, स्कूटी से जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, यहां चोट लग गई, दोनों हाथ और दोनों पैर, पैर 7-8 साल से पैरालिसिस, कुछ नहीं, उंगली भी नहीं हिलती। उसकी लौकिक बहन है, दिन रात वो सेवा करती है, बस पड़े रहना, 4 लोग चाहिए उठाने के लिए व्हीलचेयर पर उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, हमने देखा, पावरफुल स्टेज है, कोई कंप्लेंट कभी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं कि बाबा मेरे साथ तूने ये क्यों किया, मैंने क्या कमी थी, मैं कितनी सेवा करती थी, दिन रात भाग भाग के सेवा करती थी। अचानक बीमारी अचानक आएगी, परीक्षा का वो समय होगा, अचानक फ्रैक्चर, बैठो हॉस्पिटल में 1 महीना, ना आए उसके लिए भी पुरुषार्थ करना है, वॉकिंग, व्यायाम, नियमित चेकअप होता रहे, योगासन, प्राणायाम, आधा घंटा निकालना है सुबह, श्वासों को स्थिर करना है, जितना योगासन आता है, जितना प्राणायाम आता है, जितना एक्सरसाइज सीख सको सीखो, क्योंकि शरीर को हमें ठीक रखना है, शरीर गया तो सब गया, बहुत उसमें डूबना भी नहीं है और बहुत डोंट केयर भी नहीं करना है, उसकी संभाल करनी है, ये घोड़ा है, इसी में जाकर संपूर्ण बनना है। अगला पेपर है, यह है बीमारी, अगला पेपर है छोटों से पेपर। एक बताया साथी, दूसरे है छोटे, कन्याएं हो सकती है, कुमार हो सकते हैं छोटे, जो भी हमसे छोटे हैं, उम्र में, अनुभव में, अध्यात्म में, 3 चीजें, उम्र, अनुभव और अध्यात्म, स्पिरिचुअल लाइफ, ज्ञान में आने का पीरियड, उनके द्वारा भी बहुत सारे पेपर आएंगे, ये समझना कि मैं इनकी मां हूं, मुझे इनकी पालना करनी है। वो बच्चे हैं, गलतियां करेंगे, पर मुझे क्रोधित नहीं होना है, पालना करनी है। अगला पेपर है बड़ों से पेपर, ये थोड़ा कठिन पेपर है। हर एक के ऊपर कोई ना कोई है, ये यज्ञ का सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि हर एक के ऊपर कोई ना कोई बना हुआ है हायरार्की, और जो भी जहां पर भी होगा ऊपर से नीचे तक उसके ऊपर कोई ना कोई है, और उसको उसके द्वारा पेपर आएंगे। आईटी कंपनीज में एक नियम है, दो नियम है। पहला नियम लिख के रखो, बॉस इज ऑलवेज राइट। पहला नियम है बॉस इज ऑलवेज राइट। दूसरा नियम है इफ बॉस इज नॉट राइट, यदि बॉस राइट नहीं है, फॉलो रूल नंबर वन, यदि वो बॉस राइट नहीं है तो पहला नियम लागू किया जाए। और पहला नियम कौन सा है? बॉस इज ऑलवेज राइट। एक अव्यक्त वाणी चली थी बाबा की, जिसमें ये पॉइंट सीनियर वाला बहुत विस्तार से बाबा ने, हम डेट भूल गए मुरली की, पर बाबा ने कहा था, तुम सोचती हो ये बहन ऐसी करती है वैसी करती है, पर उसको निमित्त किसने बनाया? तुम सोचते हो कि इसको बुद्धि कम है, रखा किसने वहां पर? क्या बाप इतना बुद्धिहीन है कि किसको कहां रखना ये उसे पता नहीं? पेपर आएंगे, और जो पेपर आएंगे ऊपर से, हर एक के ऊपर से, पूरा ऊपर से नीचे तक जो जहां है, उनको ये सोचना है कि ये पेपर से मेरी उन्नति होगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी कि कितनी बार चंद्रगुप्त को लगा ये भी कोई टीचर है, भाग जाओ यहां से, ऐसी कड़ी कड़ी परीक्षाओं से पास कराया उसको। पर वो सारा करते करते एक बात याद रखना कि रिजल्ट इज ग्रोथ, परिणाम होगा विकास, चरित्र का, बुद्धि का। और माइंड जो नई आइडिया से स्ट्रेच हुआ है पुराने स्टेज पर नहीं जाता है, नई आइडिया आ जाती है और शक्तिशाली बनता है। तो पुराने पेपर आए, बड़ों से पेपर आए, सहन करना, उन्नति करना, ओबीडियंस हो, और सोचना ये मेरे उन्नति के लिए है। कई बार, एक बार गुलजार दादी, बहुत समय पहले की बात, बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत सारी बहनें गुलजार दादी के पास गई किसी एक सेंटर, पता नहीं कहां। बहनों ने कहा हमारी ये जो बहन है हमको बहुत तंग करती है, क्या करें? छोटी सी बहनें, दादी ने कहा तुम उसकी मां बनकर पालना करो, सूक्ष्म में, और ये भी आएगा। और वास्तव में हमारे हिसाब किताब है, और वास्तव में हमारा अहंकार है जो ये सोच रहा है कि ये ऐसा करते हैं। अहंकार कम हो जाए तो वो जो भी करते हैं वरदान अनुभव होगा, प्रेम अनुभव होगा। बड़ों से पेपर। अगला पेपर है बाहर वालों से पेपर, अज्ञानियों से पेपर, कोर्ट केसेस, पुलिस, बाहर के विरोधी लोग, उनसे भी पेपर आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो कुछ ना करे। आज के ही या कल के मुरली में था ना, तुम्हारे दुश्मन बहुत है, कल के मुरली में था, तुम्हारे दुश्मन बहुत है, क्योंकि इस यज्ञ से विनाश की ज्वाला निकलती है, तुम्हारे दुश्मन बहुत है। तो बाहर वालों से भी पेपर आएंगे, ऐसी ऐसी बातें होंगी जो हम नहीं चाहते थे करना, फिर भी पुलिस, कोर्ट केसेस, कॉम्प्लिकेशन, इन्वॉल्वमेंट, कुछ ना कुछ उन परिस्थितियों में, उन पेपर्स में भी अडोल रहना। ऐसा कुछ हुआ भी तो घबराना नहीं, अरे बाप रे अब क्या किया जाए, अपने आप को परिपक्व बनाना, थोड़ा सा ट्रेनिंग देना, मैच्योर करना, छुई मुई नहीं हो जाना, तो बाहर वालों से भी पेपर आएंगे, तैयार रहना है। अगला पेपर है मधुबन से पेपर। सबसे बड़ा कौन सा पेपर है मधुबन से बहनों के लिए? जाते ही एकोमोडेशन। बहुत सारे पेपर है उधर भी, पर एक बात याद रखना, चाहे कोई कैसा भी हो, मधुबन और मधुबन निवासी बाबा ने रखे हैं, इसके लिए हमें किसी के प्रति निगेटिव नहीं होना है। हर एक अपने संस्कार के आधार पर कार्य कर रहा है, कोई पुरुषार्थ कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, हर एक वैरायटी आत्माएं हैं। फिर सतयुग में अभी तो खुश होना है, इतनी वैरायटी आत्मा है, वाह, सतयुग में तो ऐसी वैरायटी नहीं मिलेगी, सब धुलाई हो जाएगी, तब तक परमधाम से धुलाई होकर उतरेगी नीचे। अभी कितनी वैरायटी है, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है, कोई इधर से चुबाता है, कोई इधर से चुबाता है, कोई पीछे से चुबाता है, कोई बाल ही खींचता है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई करते रहता है। बाबा ने कहा कांटों का जंगल, कांटे लेकर ही खड़े हैं चुबाने के लिए, निकलो बाहर और चुबे। हर कांटा कुछ ना कुछ सिखाता है, हर आत्मा कुछ ना कुछ सिखाती है, सीख कर आगे बढ़ना है। मधुबन से पेपर आएंगे। कितने हुए? 7, 8। ये है विघ्नों, और इस विघ्नों में अगर रुक गए तो फिर थकावट आएगी, ये रुकावट थी। फिर है कड़वाहट, समय हो रहा है पर फिर भी कुछ बातें बताएंगे। 7 प्रकार की कड़वाहट, 7 पेपर या 8 पेपर, 7 कड़वाहट। कड़वाहट बिटरनेस दिल में जब आ जाती है तब थकान होती है। सेवा कभी नहीं थकाती, कड़वाहट थकाती है या रुकावट थकाती है। सेवा तो कितना भी कर सकते हैं, पर जब कड़वाहट आ जाए तो थक जाती है आत्मा। पहली कड़वाहट है अपमान, इंसल्ट। दादी ने एक क्लास में कहा था, जानकी दादी ने, ब्राह्मणों के पास इंसल्ट सहन करने की शक्ति बहुत कम है। अपमान कर दिया किसी ने, एकांत में कर दिया तो भी ठीक, सबके सामने ही कर दिया तो, तुम तो करते ही ऐसी हो, तुमको तो आता ही नहीं कुछ, किसी ने कह दिया तो दर्द होता है, कड़वाहट आ जाती है। एक तो ये, दूसरा है आरोप, झूठा आरोप, फॉल्स एक्यूजेशन, तुमने ये किया है, कड़वाहट आती है। तीसरा है असहयोग, हमने किसी की बहुत सहायता की, कोई बीमार था हमने दिन रात उसकी सेवा की, आज हम बीमार पड़े हैं, पूछते तक नहीं, हमारे ही कमरे में, पूछते भी नहीं कि बुखार है, खाना खाया कि नहीं खाया, हम पड़े हैं सुबह से, असहयोग, दर्द होता है इधर। अविश्वास चौथा, किसी की हमने बहुत सेवा की, किसी के साथ हमने बहुत सेवा की। एक भाई अनुभव सुना रहा था, 30 साल से सेवा कर रहा हूं, एक बार पूछा कि घर में कोई बीमार है, मुझे जाना है अर्जेंट, तो निमित्त आत्मा ने कहा जाओ, अगर पर नहीं आए तो, अविश्वास। इतनी सेवा की पर अविश्वास दिखाया गया हम पर, दुख हुआ, दर्द हुआ, बहुत घायल हो गई आत्मा, ज्ञान ही छोड़ने का संकल्प चलने लगे। इतनी सेवा करने के बाद यह पूछा गया कि अगर तुम नहीं आए तो, असहयोग जब प्राप्त होता है, अविश्वास जब दिखाया जाता है, आरोप जब लगाया जाता है और अपमान जब किया जाता है, आत्मा हिल जाती है अंदर से, क्योंकि तैयार नहीं थी ये बातों के लिए। पर ये सब होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि हमेशा सब हमारी स्तुति करे, वाह 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 तुम बहुत अच्छे हो, तुम बोलते अच्छे हो, तुम्हारा ये अच्छा है, तुम्हारा वो अच्छा है। 10 स्तुति करने वाले निकलेंगे तो 2 तो निंदा करने वाले निकलेंगे। पांचवा है धोखा। किसी पर बहुत विश्वास कर लिया, किसी कुमार पर, किसी भाई पर, किसी पुरुष पर, और धोखा हुआ। सोचा क्या था और किया क्या उसने। दुख होता है। अगला है निंदा। कोई हमारी निंदा करे, हमारे साथ अच्छे से बात करे पर बाहर जाके हमारी निंदा करे, ऊपर से बहुत अच्छा अच्छा दिखाए पर हमारे पीठ पीछे निंदा करे, कड़वाहट। लास्ट विरोध, क्रिटिसिज्म। कोई हमारे क्रिटिसाइज करे, हमारे विचारों को, हमारे मत को, हमारी प्लानिंग को, हमारे चिंतन को, हमारी भावनाओं को, तब दुख होता है। ये सातों चीजें जब आती है कड़वाहट भर जाती है, वो विघ्न जब आते हैं कड़वाहट भर जाती है। ये कड़वाहट और ये रुकावट क्या क्रिएट करती है? थकावट। अगर ऐसा हो रहा है क्या करना है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या करें उन आत्माओं के साथ जिसने अपमान किया, रोज रोज ही अपमान कर रहे, धोखा दे रहे, रोज अमृत वेले हरेक को, इन सभी आत्माओं को देखना है, इमर्ज करना है, माफ करना, माफी मांगना, साक्षी होकर देखना उनको, अपने हिसाब किताब के बारे में सोचना। बहुत कड़े हिसाब है इनके साथ। किसी जन्म में हम राजा होंगे और उसके ऊपर हमने आक्रमण कर दिया, वो भी राजा होगी, और उस पूरे राज्य को हमने समाप्त कर दिया, एक एक परिवार तड़प तड़प के मरा वहां का। अब वो सारे इधर ही हमारे सेंटर में आ गए, इर्द गिर्द। हम जमींदार थे, बेचारा किसान था, उसकी जमीन हमने हड़प ली, भूख प्यास से वो और उसके बच्चे बीबी सब मर गए। अब वही कोई कन्या बनकर सेंटर पर आ गई है, कोई कुमार बनकर सामने ही बैठता है मुरली में और कुछ ना कुछ करते रहता है गड़बड़। जन्म के शत्रु ब्राह्मण परिवार में ही इर्द गिर्द फ्रेंड्स बनकर घूम रहे हैं हिसाब चुकतू करने के लिए। नया बच्चा जैसे हम संसार वालों को कहते, पालने में नया बच्चा आता है, लोग कहते कितना सुंदर है कितना, पर उसके हाथ में एक तलवार है, वो किसी को दिखाई नहीं देती। वो तलवार लेकर आया है घर में बच्चा, हिसाब चुकतू करने मां बाप से। उसी तरह इस ब्राह्मण परिवार में जब नया बच्चा जन्म लेता है, कोर्स अभी भी हुआ, उसके हाथ में भी एक तलवार है, जिसका कोर्स मैंने ही कराया बैठकर, और इतना प्रभावित हो गया और एकदम ज्ञान में चलने लगा, हम भी खुश है, पर उसके हाथ में एक तलवार है, वो निकालेगा टाइम पर और हमसे ही लड़ने लगेगा, जिसने जन्म दिया, जिसने बाबा से मिलाया जाकर उधर, जिसने पूरा मधुबन घुमाया था, जिसने ब्रह्मा भोजन खिलाया था, उसी के विरुद्ध में विद्रोह करेगा। सब हो सकता है, हमें निगेटिव नहीं सोचना है, परंतु तैयार मात्र रहना है कि यह होगा। सबके लिए शुभ भावना, सबके लिए शुभकामनाएं, सब अच्छे हैं, परंतु हमें डिटैच रहना है, शक्तिशाली रहना है, प्रभावित नहीं होना है, आकर्षित नहीं होना है, लगाव झुकाव में नहीं फंसने हैं। अपना मैं और मेरा पुरुषार्थ, मुरली, उसका चिंतन, उसका मनन, उसका अध्ययन, और हो सके तो अपने सेंटर पर रात में सोने से पहले, 2 बहने हैं तो मुरली की थोड़ी चर्चा करें, डिस्कशन होना चाहिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स का, और फिर सोए। तो ऐसी ये कुछ बातें हमने आपको बताई। ओम शांति।